चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है नक्सलवाद का अंत, विकसित भारत की ओर बढ़ते राष्ट्र पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी और नक्सल विरोधी अभियान के पूर्व अपर महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला।
श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने देश से सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सहित देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। श्रोताओं, नक्सलवाद विकास के लिए एक नासूर रहा है। यह कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समस्या भी रही है। जो क्षेत्र इससे प्रभावित थे वे देश के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले इस समस्या के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए। लाल आतंक की वजह से वहां के लोगों तक वे सुविधाएं नहीं पहुंच पाईं जो दूसरे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो रही थीं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही केंद्र और राज्य सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है। इन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद का अंधेरा समाप्त होने के बाद विकास का नया सवेरा हो रहा है। श्रोताओं, आज इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस तथा छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे तथा जाने माने सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। साथ ही हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेंद्र कुमार विज। श्री विज 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वे एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन भी रह चुके हैं और पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर त्रिवेदी और श्री विज, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
नमस्कार।
नमस्कार विज साहब, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आप एंटी नक्सल ऑपरेशन के छत्तीसगढ़ में मुखिया भी रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, खासतौर से बस्तर का जो क्षेत्र है, वहां सुरक्षा बल भी संख्या के लिहाज से देखें तो लगभग वही रहे, भौगोलिक चुनौतियां भी वही थी, लेकिन फिर क्या वजह आप पाते हैं कि माओवाद की समस्या जो पिछले कई वर्षों से काबू में आने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी, उस पर बीते महज करीब सिर्फ 2.5 से 3 वर्षों में निर्णायक रूप से काबू पा लिया गया?
मुझे लगता है ये पूरी जर्नी आपको देखनी पड़ेगी। शुरू में जब एमसीसीआई और पीपल्स वार का विलय हुआ तो ये पार्टी जो सीपीआई मॉस बनी वो ग्रेजुअली कुछ सालों तक 10-11 तक ये स्ट्रेंथन हुई, शक्तिशाली हुई। इसमें इसका मिलिटराइजेशन बढ़ा दंडकारण्य में, विशेष रूप से ये क्षेत्र अनुसार इसका एक्सपेंशन जो विस्तार हुआ, तो मिलिटराइजेशन और क्षेत्र अनुसार विस्तार, तो ये गति जो है 11-12 तक लगभग चलती रही। कुछ समय लगा सरकार को अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने में। मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ का पुलिस बल 22-23 हजार था मात्र। आज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर 80 हजार हो गया है। जो हमारी बटालियंस थी वो 7 थी, बढ़कर 22 हो गई हैं। थाने थे, कई संख्या कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है इसमें काफी समय लगता है। इवन जब मैं वहां पर आईजी पुलिस था बस्तर में, तब वहां इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। ये 2006-7-8 की बात, उस समय चरम सीमा पर था माओवाद की जो हिंसात्मक कार्रवाइयां थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ने में अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार लाई, कुछ राज्य सरकार लाई, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन हुआ, उनकी पेरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ी, टावर्स लगे, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। वो समय था बीच में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन हुआ 2015 में, 10 साल पहले। तो ये एक समय लगता है पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ने में। अभी अगर 2 साल छोड़ दें, 2-2.5 साल, उससे पिछली सरकार के समय में, राज्य सरकार के समय में, मुझे लगता है उससे पहले 5 बटालियन केंद्र सरकार ने दी थी, उसका डिप्लॉयमेंट हुआ। उसके अलावा जो बस्तर फाइटर बल है वो 3,000 करीब स्वीकृत हुआ, जिसमें सिपाही, हवलदार, थानेदार तक 2,000 का पद जो है वो नए भर्ती हुए। तो लोकल लोगों के भर्ती होने से क्या होता है कि वो एरिया को जानते हैं, वो भाषा को जानते हैं, वो संस्कृति को जानते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार नक्सली हैं और कुछ इस तरफ हैं। तो वो जो एडवांटेज पुलिस को मिला लोकल लोगों को भर्ती करने का, वो अभी पिछले सालों में कुछ मिला है। अभी पिछले जो 2-2.5 साल की अगर बात करें, इसमें 2-3 चीजें मुख्य हैं कि ये इतनी स्पीड से क्यों हमको सफलता मिली। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण लगता है मुझे वो है पॉलिटिकल विल। देखिए, एक कमिटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुई गृहमंत्री की ओर से और उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित होना। देखिए, सिक्योरिटी कैंप्स पहले भी थे, बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, तो वो जो सिक्योरिटी कैंप्स उन इलाकों में स्थापित हुए जहां सिक्योरिटी वैक्यूम था, वो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके थे, साउथ और वेस्ट बस्तर के अंदरूनी इलाके थे, नीचे के इलाके थे। वहां पर जब तैनाती हुई तो माओवादी की बटालियन या बड़े फॉर्मेशन, उनके शेल्टर के स्थान, उनकी तकनीकी इकाइयां जो थी हथियार बनाने वाली, उनके काम जब डिस्टर्ब हुए, शेल्टर उनके जब डिस्टर्ब हुए, उनको मूव आउट करना पड़ा, तो ये दौर था जिसका ज्यादा असर पड़ा। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ सप्लीमेंट हुए रिसोर्सेज जो लगने थे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर थे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने में कोई देर नहीं लगी।
जो जंगल वॉरफेयर कॉलेज है उसका भी एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो गुरिल्ला वॉर से निपटने की जो ट्रेनिंग हमारी फोर्स को दी गई, क्योंकि पहले वो नहीं थी, वो शायद आप बेहतर बता सकते हैं कि एक अलग किस्म की लड़ाई थी।
मुझे याद है, ये भी शुरुआत में ओपी राठौर साहब हमारे डीजी थे उस समय, और आर्मी के ऑफिसर आए थे डेपुटेशन पर, और वो हमने कांकेर में अकेडमी बनाई है। तो उस अकेडमी में किस प्रकार से गुरिल्ला लड़ाई लड़नी है, जंगल में रहने, जंगल वॉरफेयर उसका नाम था, कि जंगल में कैसे लंबे समय तक टिका जाए, वो प्रशिक्षण दिया गया। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कई CIATs, इस प्रकार के काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म, कई स्कूल्स खोले, 4 छत्तीसगढ़ में थे, तो ये स्कूल खोले ताकि ट्रेनिंग अच्छी दी जा सके। आर्मी स्कूल्स में हमारे जवान गए, ग्रेहाउंड में गए, ग्रेहाउंड बेहतर फोर्स मानी जाती थी। तो ये प्रशिक्षण में जो सुधार करना था, टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हुआ। आप देखेंगे कि पहले हमने जो ड्रोन खरीदा था वो स्ट्रेटजिक ड्रोन था, वो सर्विलांस के लिए था कि एरिया का आप मुआयना कर सकते हैं ऊपर से और एक अंदाज लगा सकते हैं कोई नई स्ट्रक्चर आई है, कोई नया मूवमेंट है, लेकिन इमीडिएटली आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते कि आपने कुछ देखा और तत्काल लॉन्च करें। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि टेक्टिकल ड्रोन आने लगे, अर्थात आप ऑपरेशन पे जाने लगे, आप उसको तत्काल उसको फ्लाई कीजिए, उड़ाइए उसको, आप इमीडिएटली देख सकते हैं अगले 5-7 किलोमीटर में कि माओवादी को प्रेजेंस है, ताकि आप एम्बुश ना हो सके और आपको उनकी उपस्थिति पता लग सके। तो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग था वो बेहतर हुआ है। केंद्र सरकार ने कई प्रकार के मोबाइल टावर लगाए। मोबाइल टावर लगाने से न केवल जवानों का उत्साह बढ़ा, वो घर में बात कर सकते थे, एक जमाना था बात नहीं कर सकते थे, सैटेलाइट फोन नहीं हुआ करते थे बात करने के लिए, ऑपरेशंस में फोर्स कभी कभी इधर उधर हो जाती थी, लोकेशन नहीं मिलती थी। तो टेक्नोलॉजी का जो है कम्युनिकेशन हमने एनालॉग से डिजिटल किया, तो बहुत अंतर आया है और ये लंबी जर्नी है।
साहब ये बताइए कि जैसे कोई भी लड़ाई होती है या कोई मैच भी होता है, अभी IPL का सीजन चल रहा है, तो एक कोई जो है टर्निंग प्वाइंट आता है जो डिसाइड करता है दिशा लड़ाई की या मैच की, तो नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें आपके ओपिनियन से वो टर्निंग प्वाइंट कौन सा था? क्या वो बड़े उनके जो लीडर्स, उनका सरेंडर या मारा जाना है या पुनर्वास नीति का आना, क्या वो टर्निंग प्वाइंट था?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 11-12 तक माओवाद चढ़ाव की उसमें था, उसके बाद उनका जो मास बेस है वो कम होने लगा। मास बेस कम होते होते 2018 तक वो सेटबैक की स्थिति में आ गए कि अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिस पॉइंट पर थे उससे भी पीछे हटने लगे, यहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है डोमिनेशन बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक सेंट्रल कमेटी की, उनका पॉलिट ब्यूरो जो रहता है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब हमको डिफेंसिव मोड में जाना है। ये बहुत दूर की बात नहीं है, 2024 की बात है। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि बड़े फॉर्मेशन हमारे घिर रहे हैं, 30-40 माओवादी एक साथ मर रहे हैं, तो छोटे दलों में जब हम घूमेंगे तो अटैक होगा, तो कम लोग मरेंगे, तो लोगों का उत्साह बना रहेगा उनके काडर्स का। जब उन्होंने, उनके पोलिस ब्यूरो ने ये निर्णय लिया और वो छोटे दलों में घूमने लगे, उसके बावजूद भी जब वो घिरने लगे तो मुश्किल में आ गए। टर्निंग प्वाइंट की जब बात आप कर रहे हैं, उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक, इनका महासचिव बसवा राजू मारा गया था मई 2025 में। जब बसवा राजू मारा गया, वो अपने पूरे दलबल के साथ मारा, उनके पूरी एक कंपनी साथ में रखते थे। जब वो मारे गए तो नीचे वालों में थोड़ा सा बिखराव आने लगा, उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उसमें एक स्प्लिट हुआ। एक दल था जो वेणुगोपाल, जो सोनू नाम से जाने जाते हैं, वो पोलिट ब्यूरो मेंबर था और पार्टी नंबर बसवा राजू के बाद सबसे वरिष्ठ उसी को माना जाता है, पोलिटिकल आइडियोलॉग भी है उनका। वो था कि शांति वार्ता के फेवर में, कि लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है पार्टी, अब बेटर है कि हम सरकार से वार्ता करके दूसरा रास्ता ढूंढें, अर्थात वो संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष विराम की ओर उसका इंक्लिनेशन, झुकाव था। तो उनने काडर्स के साथ बात की, और इससे पहले कि बसवा राजू मारा जाता वो भी उनके साथ बात उसकी हो चुकी थी और वो भी शायद उसी हक में था। उसके बाद जब अक्टूबर 2025 में जब वेणुगोपाल ने सरेंडर किया हथियार के साथ, उन्होंने दल बल के साथ जब चर्चा की, उसमें गढ़चिरौली, नॉर्थ बस्तर, माड़ महत्वपूर्ण था, जहां उनका तकनीकी इकाइयां भी चलती थी। जब ये 60-62 काडर हथियारों के साथ गढ़चिरौली में सरेंडर किया, क्योंकि ये स्प्लिट था, और उसके साथ अगले ही दिन जगदलपुर में रूपेश नाम के एक माओवादी ने, बड़े माओवादी ने 210 माओवादियों के साथ सरेंडर किया, तो उस समय ये टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। उसके बाद एक के बाद एक इलाके के लोग सरेंडर करने लगे, और इसीलिए मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट।
डॉक्टर त्रिवेदी, अभी विस साहब ये कह रहे थे कि बीते कुछ सालों में जो माओवादी कैडर हैं, उनको जन समर्थन मिलना या उनका जिसको मास सपोर्ट कहते हैं, वो काफी कम होने लगा था, और लोगों का भी जो देखें उनका उस विचारधारा से मोहभंग हो रहा था। जो भी आत्मसमर्पित माओवादी हैं उनके भी बयान आते हैं, इसकी क्या वजह पाते हैं आप?
शुक्र जी, मैं 1967 से ही इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहा हूँ। एक बड़ी बात मानेंगे कि वे साहब भी बात किसके तायद करेंगे कि पहले समाज का एक बड़ा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, बहुत बड़े समर्थन था। आमतौर पाते थे कि वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, और खासकर
जिनको हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं,
वो उनके साथ शामिल हो रहे थे, और उनके काडर में भी पढ़े लिखे लोगों का शामिल होना पता लगता था। पर धीरे धीरे ऊपर के स्तर पर जब केवल घनघोर संकल्प शक्ति से कि हमें केवल बंदूक के दम पर लोकतंत्र को हटाकर अपना राजतंत्र स्थापित करना लगा, तो काफी लोग उससे अलग हो गए, और उसके बाद बंगाल से बहुत जल्दी खत्म हो गया 67 में, और धीरे धीरे वो आ गया, और मुख्य रूप से वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बने, और आंध्र प्रदेश का ही काडर यहाँ पर करने लगा। लेकिन एक और बड़ी बात, फिर उन्होंने क्या किया, ये पाया कि ये जो इलाका है कि बस्तर का, जो अपने आप में केरल से बड़ा एक स्टेट
दंडकारण्य जिसको कह सकते हैं,
फिर केरल से लगा हुआ तेलंगाना का क्षेत्र, गढ़चिरौली का क्षेत्र, और इधर उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ जितनी ज्यादा गरीबी, पहली बात गरीबी, दूसरी बात अशिक्षा, तीसरी बात वहां पर क्या था कि हमारा नैसर्गिक संसाधन बहुत ज्यादा, तो उनको लगा ये ऐसा इलाका है कि जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, और उनको लगा कि हमारे काडर को नीचे की शक्ति देने के लिए सैनिक के रूप में, वहां नेता तो बहुत बन गए थे काडर का ऊपर से, पर नीचे के जो लोग आ रहे थे वो ऐसे लोग आ रहे थे जिनको लगता था कि हमें शोषण का शिकार हो रहे थे, इनको उन्होंने अपना आधार बनाया, और इसी शोषण के शिकार का फायदा उठाया नक्सलियों ने। अब यह जो परिवर्तन आया, परिवर्तन है कि बाद में जब लगा सरकार को भी लगाइए कि यहाँ पर भाई कि हमारे अधिकारियों का ऐसे प्रस्तावना कर दिए कि उनको ये ना लगे कि हमारी पनिशमेंट पोस्टिंग है, बस्तर में अगर पोस्टिंग हो रही पनिशमेंट पोस्टिंग हो रही, और हमने देखा कि हमारे बहुत ही अच्छे से अधिकारी, फिर चाहे वो आईएएस के हो, चाहे आईपीएस के हो, चाहे आईएफएस के हो, और इन्होंने जाकर बदला, उसका नीचे एक परिवर्तन लाना शुरू किया, और एक भावना बनी, या नक्सलवाद के विरुद्ध जो सामाजिक आंदोलन भी चले थे, एक बार ये परिवर्तन आया कि हाँ नक्सल क्यों आए, नक्सल इसलिए आए कि हाँ हमारे विकास और कल्याण के प्रशासन में जो समर्पण भाव होना चाहिए वो समर्पण भाव नहीं है, और नीचे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और उसके शोषण के शिकार हमारे जो लगभग निरक्षर सीधे साधे आदिवासी हो रहे हैं, और इस पे एक परिवर्तन आया। दूसरी बड़ी बात जो है, इसकी बहुत बातचीत होती है, ये माना जाता है कि हमारे लिए जल, जंगल, जमीन एक भौतिक संपदा है, पर आदिवासियों के लिए वो भौतिक संपदा नहीं है, वो उनके जीवन शैली का अंग है, उनके जीवन का ही अंग है, जल, जंगल, जमीन उनके जीवन का ही अंग है, ये कहना चाहिए कि आदिवासी के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, और इसलिए माना गया कि वहां पे अगर हमें जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित करना है, तो ये भी एक दृष्टिकोण स्थापित हुआ कि अगर हमें नक्सल ऑपरेशन का सामना करना है तो हमारे अधिकारियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो जल, जंगल, जमीन है उससे किसी प्रकार का भी वहां पर शोषण उन आदिवासी भाइयों का नहीं हो। और तीसरी बड़ी बात कि जिसको मैंने अभी संकेत किया कि ऐसे चुनिंदा वहां पे अफसर आईएएस के भी, आईपीएस के भी और आईएफएस के भी लगातार पोस्ट होते रहे, जिनके मन में कहीं न कहीं संवेदना भावना थी, अपना काम करने की बात तो अलग थी, अगर आईपीएस है तो उन्हें कहा हमको गोली चलानी है, आईएफएस है हमको जंगल बचानी है, और आईएएस है तो हमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, पुलिस और पुलिस करना, तो इन्होंने जाके कि जो संवेदनशीलता है प्रशासन के कार्य में, जो संवेदनशीलता आ रही है प्रशासन काल में कि हमें सामान्य शहरी इलाके या सामान्य ग्रामीण इलाके की बजाय इन जंगल के क्षेत्रों में कई अतिरिक्त संवेदनशीलता से काम करना पड़ेगा, और इसीलिए हम पाते हैं कि ऐसे अनेक उपाय अधिकारियों ने वहां पे किए और राज्य शासन ने भी अनेक उपाय किए, इस कारण एक अंतर आना शुरू हुआ।
एक बात और है डॉक्टर त्रिवेदी, कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने कई बार इस बात को कहा है कि नक्सलवाद पनपने का कारण गरीबी नहीं बल्कि एक खास विचारधारा रही है। उन्होंने कहा कि नक्सल विचारधारा का विकास से कोई लेना देना नहीं है बल्कि इसने विकास को सालों तक बाधित किया। आपका क्या मानना है?
मैं सहमत, मैंने जो बात की ना आपको कि जब नक्सलवाड़ी में 1967 में एक जमींदार के द्वारा अपने खेत में काम करने वाले लोगों का शोषण किया जाता, उसके विरुद्ध ने किया था और धीरे धीरे फैला हुआ था और बाद में भी पूरे नक्सल आंदोलन के वैचारिक राजनीतिक जिसको विकास क्रम को उनने बताया कि किस दूसरी बड़ी बात है। स्वयं गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में भाषण दिया तो उन्होंने पूरे वामपंथ के विकास पर प्रकाश डाला था बड़ा किस्म कि किस तरीके से और किस तरीके से उनका भेद हुआ। जो वामपंथ के बड़े नेता चारू मजूमदार जैसे बड़े लोग थे जिनसे कमिटमेंट था और मैंने बताया आपको कि पहले उसमें पढ़े लिखे लोग काफी प्रबुद्ध लोग आ रहे थे और बाकी प्रबुद्ध लोग उससे दूर हो गए और ऐसे लोग जिनको लगा कि हाँ केवल बंदूक के सहारे हम इस लोकतांत्रिक सत्ता को पलट करके अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं और उनको लगता था कि हम यहाँ पर किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। पर जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं गृह मंत्री जी वो देखे कि जितने भी क्षेत्र हैं बंगाल से शुरू होकर बिहार, बिहार से आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र, आंध्र से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उत्तर छत्तीसगढ़ में जिस इलाके में भी जिसको उन्होंने लिबरेटेड जोन भी घोषित किया, क्यों भी साहब उस लिबरेटेड जोन में भी जहां पर की पुलिस घुस नहीं सकती, जहां कोई सरकारी कर्मचारी जा नहीं सकता था, वहां किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति का कोई कल्याण नहीं हुआ।
कई स्कूल उजाड़ दिए गए,
बम धमाके, तो अलग बात हुआ ये थी कि वहां जाके स्कूल को उड़ा देना, अस्पताल को उड़ा देना, पानी टंकी को उड़ा देना, बिजली को उड़ा देना,
सड़कें नहीं बनने,
सड़कें नहीं बनने, उससे भी बड़ी बात थी। उनको लगता कि हम इसको तोड़ के हम पुलिस को नहीं आने देना चाहते जिससे कि पुलिस आ नहीं आ सके और प्रशासन नहीं पहुंच सके। दोनों बातें, पुलिस तो नहीं आ सके, प्रशासन जो वहां पर विकास और कल्याण की धारा को प्रवाहित कर सके। तो ये जो बात थी इसे सीधी सी बात है कि विकास या कल्याण से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो केवल ये चाहते थे कि जिस माओवादी विचारधारा का समापन रूस में हो चुका था लेकिन उस समाप्त होने वाली विचारधारा का सत्ता केवल बंदूक की नली से आती है इस बात को स्थापित करके वहां करना चाहते थे। मैंने चुनाव कराया, जब चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव में भाग लेगा उसके हम 6 इंच ऊंचाई कम कर देंगे। 6 इंच ऊंचाई कम कर देंगे मतलब
गला काट देंगे।
फिर उन्होंने कहा जो वोट डालने जाएगा उसका हाथ गायब हो जाएगा। ऐसी स्थिति है, उस वक्त जो मैंने काम कराया वो ये कि ऐसे अधिकारी जो वहाँ पे थे उनकी सहायता ली और गांव में जो काम कर रहे थे जनता के लिए उन लोगों को मैंने अपने
साथ में लिया।
एक बड़ी बात और बताऊं आपको, अचानक खबर आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने चुनाव कराया, खबर आई कि सर 100 पोलिंग पार्टीज गायब हो गई है और खबर छप गई पोलिंग पार्टी को नक्सलवादियों पकड़ लिया होगा। पर हुआ ये कि पता लगा क्योंकि वो लोग थे कमिटेड लोग थे, बिल्कुल सेवा करने वाले थे और गांव के लोग भी जानते थे कि सेवा करने वाले, उन्होंने नक्सलवादियों से बचाकर एक अलग रास्ते से पगडंडी से उनको अल्लाह पहुंचा दिया, पहुंचाते हैं। अर्थात ये जो परिवर्तन आया कि जब जनता को भी लगा कि हाँ नक्सलवाद तो केवल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं और सरकार जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक
संवेदनशीलता के साथ हम तक आगे सुविधाएं पहुंचाना चाहती है,
ये बात फिर चाहे चुनाव की बात हो फिर चाहे विकास की बात को लाने का, तो ये जो संवेदनशीलता वाली बात आ गई और जो मैंने कहा कि अफसर अपने आप को आदिवासी भाइयों से ऊपर नहीं समझ के उनके बराबरी मानने लगे।
मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर त्रिवेदी साहब ने कहा है। देखिए अगर आप माओवादियों की आइडियोलॉजी देखें, माओवादियों का सेंट्रल एजेंडा देखें इस पार्टी का, उसमें कहीं भी विकास की बात नहीं है। जितने भी उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए चाहे उनके 9th कांग्रेस में किए हों या सेंट्रल एजेंडा जिसको अभी तक वो फॉलो कर रहे थे, एजेंडा मात्र था पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, तो विकास की बात नहीं है। और अगर उन्होंने जो जनता सरकार के नाम पर कुछ काम किए, कुछ छोटे मोटे काम किए उन्होंने, कहीं तालाब खोदना, कहीं बगीचा लगाना, कहीं समतलीकरण करना, वो केवल इसीलिए कि लोगों का जुड़ाव उस पार्टी से बना रहे, मात्र उतना। तो विकास कभी उनके एजेंडा पर था ही नहीं, इसीलिए हमको उनकी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। तो एजेंडा में भी उनका बिल्कुल भी पॉइंट नहीं था।
अभी साहब एक बात है कि जब भी कोई मिशन होता है या हमें कोई टास्क पूरा करना होता है तो दो चीजें महत्व होती हैं, या तो वो लालच से पूरा होता है या डर से। तो इसमें जब ये बात हो रही थी नक्सलवाद पे काबू पाने की, तो केंद्र सरकार चाहे वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हो या राज्य के हमारे जो गृहमंत्री, बार बार कह रहे थे कि भाई जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे, लेकिन जो नहीं करेगा तो फिर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो जो मुख्य धारा में वापस लाने की बात है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी आकर्षक पुनर्वास नीति भी बनाई। तो इसका कितना योगदान रहा है इस पूरी समस्या को खत्म करने में, क्योंकि कई चीजें होती हैं, इसका कितना बड़ा योगदान रहा है?
देखिए, पुनर्वास पॉलिसी छत्तीसगढ़ की करीब 20 साल से प्रभावशील, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं कोई बहुत बेसिक परिवर्तन नहीं हुए। पॉलिसी में दो तीन मुख्य प्रावधान होते हैं। एक ही रहता है कि जो किस काडर का जो रैंक है, जब वो आत्मसमर्पण करता है तो उसको कितनी नगद राशि एक मुश्त राशि दे दी जाए डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर रैंक। उसी के साथ रहता है कि क्या वो हथियार के साथ आया या बिना हथियार के आया है। हथियार के साथ आता है तो उसको जल्दी राशि एक मिलती है। मैं स्टेट पॉलिसी की बात अभी कर रहा हूं। तो एक तो राशि देने की बात हो गई, दूसरा रहता है कि उसको जॉब मिल सकती है क्या कोई। आप एक मुश्त राशि दे देते हैं लेकिन जीवन यापन के लिए आपको रेगुलर कुछ ना कुछ चाहिए अपनी फैमिली को रखने के लिए। तो पुलिस में कुछ प्रावधान है कि होमगार्ड में कुछ अगर उपयुक्त हो, कंडक्ट ठीक रहा हो कुछ समय तक मिनिमम 6 मंथ्स, तो उसमें सिपाही बनाया जा सकता है, पुलिस में लिया जा सकता है। इस प्रकार का चाहे वो नक्सल वायलेंस का विक्टिम हो, चाहे वो नक्सल अगर मुख्यधारा में आ गया हो तो उसको भी लिया जा सकता है। कुछ हैं भी सही जो काम कर रहे हैं, ये दूसरी बात हुई। तीसरा है कि उसको घर मिल जाए जहां वो फैमिली को रख सके, उसमें क्या सुविधा दी जा सकती है। तो ये दो तीन पॉइंट मुख्य हैं जो पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये पॉलिसी जैसे मैंने बोला 20 साल से है, केंद्र सरकार की पॉलिसी भी ग्रेजुअली डेवलप हुई है। पहले एक सामान्य प्रावधान था, बाद में उसमें आया कि उनमें फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, कुछ राशि दे दी जाएगी जो 3 साल से पहले उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन स्टेट की पॉलिसी में है कि इमीडिएटली दिया जा सकता है, कुछ इमीडिएटली उसको उपयोग करना हो तो किया जा सकता है। केंद्र की राशि 2.5 लाख 5 लाख तक उसकी सीमा है, और राज्य की पॉलिसी जो है 1 करोड़ तक का प्रावधान है। अगर कोई जनरल सेक्रेटरी अगर सरेंडर करता है या मारा जाता है तो इनाम की राशि कितनी है 1 करोड़ तक है, तो बहुत ज्यादा राशि है। तो केंद्र सरकार ने अभी 1.5 साल पहले ही 15,000 मकान 1 BHK के स्वीकृत किए हैं, जो
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत,
जी उस योजना के तहत किए हैं। तो ये पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि इतने सालों से पॉलिसी थी, अगर केवल पॉलिसी के कारण होता तो शायद ये सक्सेस बहुत जल्दी मिलती। अभी जो आए हैं सरेंडर, वो ज्यादातर आए हैं क्योंकि वो घिर चुके हैं, वो उनकी लड़ने की क्षमता नहीं बची, वो चारों तरफ घिर के मरने लगे हैं। उनके टॉप लीडरशिप, उनको लगा कि या तो मारे जाएंगे या बेहतर वो सरेंडर कर दें। तो सरकार की ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो बनती है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा है, आपके पास आकर आत्मसमर्पण कर रहा है, आप उसके पुनर्वास की चिंता करें। तो उसके कारण चाहे माओवादी कम आए हों उसको देखकर, लेकिन जो आ गए हैं उसके पुनर्वास की चिंता सरकार को करनी है। तो जितनी अच्छी पॉलिसी होगी लोग उतने संतुष्ट रहेंगे। तो मुझे लगता है पॉलिसी एक अच्छी होना बड़ा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, एक अच्छी भूमिका वो प्ले करती है, चाहे वो पहले चाहे वो बाद में।
विस साहब, एक बात और कि ये कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप IPS अधिकारी रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन के मुखिया भी रहे हैं। अब सशस्त्र नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं अब वहां पर क्या चुनौतियां हैं?
दो तीन बिंदु मैं रेखांकित करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि अभी जो माओवादी सरेंडर हुए हैं, अभी भी उनके अनुसार भी और अदरवाइज भी पुलिस फोर्सेस की नॉलेज में है कि कई जगहों पर ID अभी भी बिछे हुए हैं। आपने देखा होगा अभी भी कुछ न कुछ उसमें घटनाएं हो जाती हैं। कुछ प्रेशर IDs रहती हैं जो पैर रखने के ऊपर अपने आप विस्फोट होती हैं, कुछ रहती हैं जो ट्रिगर करनी होती हैं। तो ट्रिगर करने वाली हो सकता है कम हो जाए घटनाएं क्योंकि माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रेशर IDs कहीं हैं। मुझे लगता है उनको खोदना, अभी उनको निकालना डिफ्यूज करना एक पुलिस का काम है। कुछ डंप्स हैं जो मारे गए नक्सली, डंप्स का मतलब हथियार आर्म्स एम्युनिशन पैसा यहां तक कि सोना कहीं ना कहीं डंप्स में रखा हुआ है। अगर वो माओवादी मारा गया है और दूसरे माओवादी को नॉलेज नहीं है तो उनको खोजना भी एक जिम्मेवारी और एक अहम काम है मुझे लगता है पुलिस का, क्योंकि वो कभी फ्यूचर में किसी और के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए हथियार आर्म्स एम्युनिशन। तो पहला तो ये बचा हुआ काम जो थोड़ा सा, तो इन इलाकों में ये थोड़ा सा काम अलर्ट रहने की भी जरूरत है। अभी कुछ हालांकि काडर बहुत कम है, उनके रीऑर्गेनाइज होने के चांस ही बहुत कम है, तो वो खतरा नहीं है अभी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी उन पे कार्रवाई अभी जारी रखना है जितने भी काडर बचे। तो एक तो ये बचा हुआ काम थोड़ा सा जो पूरा करना है। दूसरा, जैसे पहले चर्चा हुई है कि पुनर्वास है, अब बड़ी संख्या में लोग सरेंडर किए हैं, तो उनकी जो पुनर्वास नीति में जो प्रावधान है मुझे लगता है उसको सिंसेयरली फुलफिल करना है। किसी न किसी को जॉब घर बना के देना, ये जितने 3 चीजें मैंने बताई, पैसा समय पर उनको मिल जाना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके फलस्वरूप कोई असंतोष नहीं होना चाहिए लोग। तो एक तो ये पुनर्वास नीति जो है मुझे लगता है उसका एक छोटी सी कमेटी बना के, जस्ट मेरी ऐसी सोच है कि वह कंटिन्यूसली काम करने की जिम्मेवारी कुछ अधिकारियों को देकर उसको फुलफिल करना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आप जो विकास की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि पिछड़ापन एक मुख्य कारण था, मैं उसको 2-3 स्थितियों से देखता हूं। माओवादियों ने जब दंडकारिणी को सिलेक्ट किया था, बेसिक गुरिल्ला लड़ाई शुरुआत हुई थी वो तेलंगाना में हुई थी, जब ये तेलंगाना में गो टू विलेज और जगत्याल और करीमनगर और आदिलाबाद में जो लड़ाई जब बढ़ी वहां पर गुरिल्ला लड़ाई जब स्टेट ने एक्शन लेना शुरू किया तो माओवादियों ने सोचा उस समय नक्सल बोला जाता था कि उनको कोई एक रियर सेक्टर डेवलप करना है कि वहां प्रेशर बढ़े तो कोई दूसरी जगह होनी चाहिए जहां शेल्टर ले सके। तो दंडकारण्य को डेवलप करने की शुरुआत एज ए रियर सेक्टर हुई थी और ग्रेजुअली इसको फिर बेस सेक्टर बनाने की बात हो गई थी। ये इसलिए इलाका चुना गया था, तीन बातें इसके अंदर मुख्य थी। एक पिछड़ापन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनको लगता था कि उनको इन्फ्लुएंस जल्दी किया जा सकता है, जो क्लास डिफरेंसेज है वो बड़े विजिबल है। दूसरा ये थे कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की प्रेजेंस, चाहे वो सामान्य प्रशासन की हो जैसे सर ने बताया या पुलिस की प्रेजेंस हो, वो बहुत मिनिमम थी। पुलिस के थानों की आवश्यकता ही नहीं थी, पीसफुल एरिया हुआ करता था। तीसरा जो माओवादियों ने मुख्य कारण चुना था वो ये था कि जो इलाका है हिली और फॉरेस्टेड वो लड़ाई के लिए, गुरिल्ला लड़ाई के लिए अनुकूल था। तो अब जब माओवादी सरेंडर करेंगे तो एरिया की बात खत्म हो गई, अब मुख्य आ जाता है पिछड़ापन। अब वो जो कारण बना था पिछड़ापन चुनने का, अब वो दूर करना सरकार का। तीसरा है कम्युनिस्ट एजुकेशन जो उन्होंने दी जनता स्कूलों में, उसको अंडू करना। तो अपने जो शिक्षा के लिए, चाहे हमको अपने आश्रम बनाने हो, जहां स्कूल संभव हो वहां स्कूल बनाना हो, बहुत जरूरी है कि बच्चों को लाकर जो थोड़ा बहुत भी कम्युनिज्म के बारे में सीखें उसको अंडू किया जाए और जो अपनी शिक्षा है वो उनको दी जाए। ये बड़े बेसिक काम है। बाकी माओवादियों के नसबंदी के ऑपरेशन हुए, उनकी फैमिली के लिए और संबंधी के लिए काम करना, उनको ओपन करना और फिर फैमिली अगला जी सके, इन्होंने कई ऐसी और चीजें हैं जो मुझे लगता है सरकार को करनी है ताकि वो जो गैप था सोशियो इकोनॉमिक, मुझे लगता है वो दूर हो जाए।
डॉक्टर त्रिवेदी, हम इस परिचर्चा के अंतिम चरण में हैं। जो सवाल मैंने विस साहब से पूछा वही सवाल विकास की दृष्टि से, वहां के लोगों की जो भी विकास हो उन लोगों की मूल अपेक्षाएं उनकी आवश्यकताएं के अनुरूप होना चाहिए, आपके लिहाज से क्या चुनौती है और किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए?
सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने कहा कि जल जंगल जमीन का इस तरीके से विकास किया जाए, हमारा विकास ऐसा हो पहली बार कि जिससे जल जंगल जमीन को लगे कि उसमें उनकी भागीदारी बनी हुई है,
सस्टेनेबल,
हाँ बनी हुई लगातार, उससे उनको अलग नहीं किया जा रहा है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ये हो कि उनका उनके साथ ये जो माओवाद की थ्योरी है जो उनका इंडॉक्ट्रिनेशन किया जा चुका है उससे उनको दूर करने के लिए, अर्थात जितने उनके करीब जाएंगे हमारे जनप्रतिनिधियों को उनसे अपना संपर्क लगातार अपने क्षेत्र में निरंतर बढ़ाना होगा और ये सिद्ध करना होगा कि सरकार की सारी योजना आपके कल्याण के लिए है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को वहां पर इस तरीके से उनकी जो लोक संस्कृति है उनकी जो आदिम संस्कृति के कारण, और दूसरी एक बात कि वहां पर जो किसी प्रकार का सामाजिक दुराव वहां पर नजर ना आए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमारे जो जमीनी स्तर के अधिकारी हैं उनका ये ना लगे कि ये किसी प्रकार का शोषण कर रहे हैं, तो ये मोह भंग ना हो, अर्थात हमारे उस स्तर के भी कर्मचारियों को पूरी तौर पर सभी स्तर के अधिकारियों को कहीं ज्यादा पारदर्शिता के साथ, जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं वहां पारदर्शिता जरूरी है पर यहाँ पारदर्शिता और ज्यादा जरूरी है, और यहाँ भाईचारापन जो मैंने कहा ना कि आप जाइए तो ये मत मानिए कि आदिवासी से हम ज्यादा जानते हैं, और मेरा मानना यह है कि अब हमें सबसे बड़ी लड़ाई राजनीतिक स्तर पर लड़नी होगी कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये उनके लिए है और जो विकास है जल जगह जमीन ये उससे उनको वंचित नहीं किया जा रहा है और सारी सुविधाएं उन्हें उनके पास पहुंच रही है, उनसे उनसे छीनी नहीं जा रही है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा।
बहुत ही सार्थक चर्चा रही और जिसको कहना चाहिए 360 डिग्री से आप लोगों ने इसको समझाया है, कोई व्यायाम छूटा नहीं है। डॉक्टर त्रिवेदी और श्री विस साहब, हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद,
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे नक्सलवाद का अंत, विकसित भारत की ओर बढ़ते राष्ट्र पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी और नक्सल विरोधी अभियान के पूर्व अपर महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है।